کراچی اجتماع کا پہلا بیان ڈاکٹر سلیم صاحب بعد نماز عصر.
دوبارہ واپس نہیں آتا. پیسے ہوئے تیار نہیں کراتے ہیں अगर इस पे फायदा उठा लिया, इससे कपड़े धो लिए, नहा लिया, खेती को लगा लिया, ये पानी काम देगा, वरना ये बहता हुआ समंदर की तरफ को चल रहा है। जिंदगी का बहता हुआ सरमाया है जो मेरे हाथ से चला गया, जो भ्रष्ट हाथ से निकल गया, अब ये दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। कयामत के दिन अल्लाह पूछेंगे मेरे बंदे, तुम दुनिया में कितना रहे? यौम हो बाल यौम, कि अल्लाह एक दिन जो उस सब कुछ 70 साल गुजारने वाला, 80 साल गुजारने वाला, वो भी यही जवाब देगा, एक दिन क्या उसका कुछ हिस्सा। अब ये थोड़ी सी जिंदगी, थोड़ा सा वक्त अल्लाह ने दिया है, इस वक्त को अगर सही तरह से इस्तेमाल कर लिया तो ऐसे इंसान कामयाब होंगे, और अगर इस वक्त को सही तरह इस्तेमाल न किया तो फिर नुकसान होगा, खसारा होगा, दुनिया में भी परेशानियां आएंगी और आखिर के अंदर भी मुसीबतें होंगी। हर इंसान बादशाह सलामत अपनी बादशाहत के बावजूद अल्लाह का कसम खा के कह रहे हैं, ये खसारे में जा रहे हैं। वजीर साहब अपनी वजारत के बावजूद खसारे में है, सदर साहब वजारत के बावजूद नुकसान में है, बहुत मालदार है, बहुत माल कमाया, लोग कहते हैं बड़ा कामयाब हो गया, अल्लाह कहते हैं ये खसारे में जा रहा है। बड़ी डिग्री हासिल की, बड़ी मेहनत की उसने, बड़ी जान लगाई, लद्दाख तालीम हासिल की, बड़ी डिग्री हासिल कर ली, सब कह रहे हैं ये कामयाब हो गया, अल्लाह कह रहे हैं खसारे में। हर इंसान खसारे में जा रहा है, टोटे में जा रहा है, और अल्लाह अकबर, और लोग उस नुकसान से बचने वाले कौन है? मगर वो जो लोग ईमान ले आए और जिन्होंने अपने अमाल की फिक्र कर, जिन्होंने ईमान को हासिल कर लिया, दिलों के अंदर यकीन को हासिल कर लिया, जो अल्लाह के यहाँ मतलूब है, अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की पहचान हासिल कर ली, वो अल्लाह कौन है जिसने आसमानों को बनाया, वो अल्लाह कौन है जिसने जमीनों को बिछाया, वो अल्लाह पर कौन है जो हवाओं का निजाम चला रहे हैं, वो अल्लाह कौन है जिसने मुझे आंखें दी, आंखों में देखने की कुव्वत रखी, हाथ दिए, हाथों में पकड़ने की ताकत रखी, जुबान दी उसमें बोलने की ताकत रखी, दिमाग दिया उसमें सोचने की कुव्वत रखी, पांव दिए उसमें चलने की ताकत रखी, तुम्हारे सभी अल्प के तुम तुम्हारे अपने अंदर भी तुम्हारे दिया दिया है जिससे तुम अपने रब को पहचान करते हो, और तुम्हारे जिसम के बाहर बेशुमार निशानियां, एक एक जर्रा अल्लाह दोनों के साथ बना हुआ है, एक बच्चा अपनी जगह के करवट ही बदल सकता जब तक अल्लाह के इरादा ही हो, तो सारी कायनात जो उसका बच्चा है उसका हुक्म चलता है, उस अल्लाह को पहचानो, उसकी मार्फत हासिल करो, और उस अल्लाह के सामने उस अल्लाह की मदद की प्यार, अल्लाह की मार्फत ये कलमा कलमा मार्फत है, अल्लाह को पहचानने का कलमा है, और ये कलमा कलमा अबदियत है, आकिब को पहचानो, इस कायनात के बनाने वाले को पहचानो, अपने पैदा करने वाले को पहचानो, और फिर उसके सामने झुको, उसकी बंदगी उसकी इजाजत के ऊपर आ जाओ, उसकी फरमा बरदारी पर आ जाओ। वो अल्लाह जिसने सारी कायनात को बनाया है उसकी मान मान के चलेंगे, उसके हुक्मों को पूरा करेंगे, उसकी मर्जी से जिंदगी गुजारेंगे, वो अल्लाह से राजी हो जाए। तो अल्लाह को पहचानना, अल्लाह की मार बता दे, और अल्लाह पाक ने ये सारा जो कायनात का इंतजाम बनाया है, जाहिर में हमें कुछ और नजर आ रहा है, पीछे फरिश्तों का इंतजाम है, फिर उसके बाद मौत है, फिर जन्नत है, जहन्नुम है, ये सारी इसको दिलों के अंदर इसका यकीन दिलों में भी, तो अल्लाह की इदाद अल्लाह की बंदगी पे आ जाना, तो जो लोग अल्लाह की बात को हासिल करने वाले होंगे और अल्लाह पाक ने जो है भी निजाम बनाया है उसको उस पर ईमान लाने वाले होंगे, अल्लाह उनको कामयाब करेंगे, वो टोटे से निकल के वो खसारे में से निकलेंगे। जो हाल हमारे ऊपर आया अल्लाह ने भेजा है, जो हाल किसी के ऊपर आ रहा है अल्लाह के इरादे से आ रहा है, अल्लाह को पहचानना और फिर अल्लाह की मानना, वामिल सालेहात अच्छे अमाल किए उन्होंने, अच्छी जिंदगी गुजारी, नेकियां कमा ली, नेक अमाल कर लिए, ऐसे लोग खसारे से निकल गए, ये लोग कामयाब हो गए, बल्कि दुनिया के भी हालात अल्लाह ठीक करेंगे और आखिरत के हालात भी अल्लाह के ठीक करेंगे, जिन्होंने ईमान को बना लिया और अमाल को ठीक कर दिया। हालात का ताल्लुक माली लक्ष्यों के साथ नहीं है, माली चीजों के साथ नहीं है, जितने भी हालात हैं चाहे एक फर्द पे आते हो, चाहे किसी कौम पे आते हो, किसी शहर के ऊपर हालात उतरते हो, या किसी मुल्क के ऊपर, किसी जमाने वालों पर कोई हाल आ रहा है, हालात के खालिक अल्लाह है, अमल लाने वाले मोमिन अल्लाह है, इज्जत देने वाले वो अल्लाह है, فطر سے بچانے والے مدد اللہ پاک ہیں, حفاظت کرنے والے اللہ ہیں, حفیظ وہ ہیں, کافی صحت دینے والے وہ ہیں, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. کہتے ہوں عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, 10-12 سال کی عمر تھی, میں لڑکے تجھے کچھ باتیں کہتا ہوں, بہت سے بولتا میں کہہ لڑکے تو اللہ کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا, تو اللہ کی حفاظت کر, تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. اللہ کی حفاظت سے مراد اللہ کے دین کی حفاظت ہے, اللہ کے عوامل کی حفاظت ہے, اللہ تو خود حفیظ ہے, وہ کسی حفاظت کا محتاج ہے. اے لڑکے دو بات تجھے موت کی ہے, خوشی غم پریشانی راحت مصیبت, جو بات تجھے پہنچی ہے وہ ہر حال میں تجھے پہنچی تھی, اور جو نہیں پہنچی وہ کبھی تجھے تک نہیں پہنچی. اے لڑکے اے بیٹے ساری دنیا کے انسان مل جائیں تجھے رفا دینا چاہیں نہیں دے سکتے, مگر وہ جو اللہ نے تیرے لیے کس رکھا ہے, اور ساری دنیا کے لوگ مل جائیں مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے, مگر وہ جو اللہ نے تیرے لیے کس رکھا ہے. اے بیٹا تقدیر کا قلم ہر چیز کو لکھ چکا ہے, چاہے خوش ہو چکی ہے اور قلم اٹھا لیا گیا, ساری کائنات کے اوپر اللہ کا سکہ چلتا ہے, اللہ کا حکم چلتا ہے. جو اللہ کو پہچانیں گے, اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے, اللہ کی بندگی والی زندگی پر آئیں گے, اللہ اپنے اعمال کو ٹھیک کریں گے, اللہ پاک ان کے دنیا کے حالات کو ٹھیک کریں گے, آخرت کے حالات کو ٹھیک کریں گے. کیا تھا اگر بستیوں کے لوگ ایمان اور تقوی کو اختیار کر لیتے, ایمان اور تقوی کو اختیار کر لیتے, اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیتے, اللہ کی معرفت اللہ کی پہچان حاصل کر لیتے, اللہ پاک زمین و آسمان کی برتنیں ان کے اوپر کھول دیتے. تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو, ہمارے ذمے ایمان والوں کی مدد کرنا, ہمارے ذمے ایمان والوں کو نجات دینا, یہ سب تو ہے ہی اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. تو ایمان پہ اور اعمال کے ٹھیک کرنے پہ اللہ پاک دنیا کی بھی کامیابیاں دیتے ہیں, آخرت کی بھی کامیابیاں دیتے ہیں, دنیا کے بھی حالات کو ٹھیک کرتے ہیں, آخر کے بھی حالات کو اللہ پاک ٹھیک فرماتے ہیں. میرے بھائی اور بزرگو زندگی ایک اللہ نے دی ہے, تمہارا اس دنیا میں کسی کو آنا نہیں, جب موت کا وقت آئے گا پھر آدمی پچھتائے گا. ہر روز موت کی طرف کو چل رہا ہے, ہر روز قبر کی طرف کو چل رہا ہے, یہ قبر یا جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے. ہر انسان کو جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے, ایک اللہ والے جنازے کے ساتھ جا رہے تھے, کسی نے پوچھا حضرت کس کا جنازہ ہے, تمہارا تیرا جنازہ ہے, اور اگر تجھے برا لگے تو میرا جنازہ ہے. ہر ایک کو موت کی طرف کو چلنا ہے, اور موت سب سے بڑا سچ ہے, اور سب سے بڑا سچ. اور آگے قبر کے حالات آ رہے ہیں, یہ قبر یا جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے. قبر میں جب رکھا جاتا ہے ہلکے نکال کر کیا اس کی قبر کو کھول دیا جائے گا, یا پھر چاروں طرف سے قبر اس کو بھیجے گی, ایک طرف کی پسلیاں دل کی طرف میں گھس جائیں گی, یا اس قبر کے اندر اس کے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی, جہاں سے جنت کی خوشبو ہے اور ہوائیں اس کے لیے آئیں گی, یا اس قبر کے اندر اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی, جہاں سے جہنم کا دھواں اور وہاں کی بدبو آئے گی. قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تو عمال نامہ اس کے دانے ہاتھ میں ہوگا, لوگوں کو دکھاتا پھرے گا شوق سے فخر کے ساتھ, آؤ مکراؤ کتاب دیا, آؤ میری کتاب دیکھو, میرا عمال نامہ دیکھو, مجھے یقین تھا کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اللہ نے دیکھو مجھے کامیاب کر دیا. اور اس کی طرف بیچارے کو پیچھے سے اس کو عمال نامہ دیا جائے گا, الٹے ہاتھ سے دیا جائے گا, روئے گا پریشان ہوگا, کاش میری ماں نے مجھے جائے نہ ہوتا, کاش میں آج کسی مٹی کا ڈھیر بن جاتا, یہ تمنا کرے. اور پھر کیا ہمیشہ کا ٹھکانا جنت بنے گی, کیا ہمیشہ کا ٹھکانا دوزخ بنے گی. جو جنت سے بچا لیا گیا اور جنت سے داخل کر دیا گیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا, فقط بات یقیناً کامیاب ہو گیا. اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کامیابی کا ایک راستہ بنایا ہے, ایک راستہ بنایا ہے, جیسے سارے انسانوں کے لیے پیدائش کا ایک نظام ہے, چاہے بادشاہ کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہو, چاہے کسی فقیر کے ہاں, ساری دنیا کے انسانوں کے لیے پیدائش کا ایک نظام ہے, پرورش کا ایک نظام ہے, چاہے وہ مالدار کھانا کھاتا ہے, چاہے غریب کھانا کھاتا ہے, ظاہری نقشے مختلف ہیں, اندر کا نظام پرورش کا سب کے لیے ایک ہے, اسی طرح موت کا نظام بھی سب کے لیے ایک ہے. کسی مالدار کی موت آتی ہے, کئی ڈاکٹر کئی دوائیں مختلف اسپتال, اس کی موت کا وقت آیا, غریب آدمی پانی کا بوند پوچھنے والا اس کی موت کا وقت آیا, दोनों के अंदर का निजाम क्या, वो निकली बदन भट्टी का ढेर बन गया। तो सारे इंसानों के लिए पैदाइश का और परवरिश का और मौत का निजाम सबके लिए एक है, इसी तरह से सारी दुनिया के इंसानों के लिए कामयाबी और नाकामी का निजाम एक। वो क्या है कि जो लोग ईमान को बनाएंगे, आमाल को ठीक करेंगे, अल्लाह ने वो जिंदगी जो आसमानों से बसर करके अपने हबीब अलैहिस्सलाम के जरिए से इंसानों तक पहुंचाई है, जो जिंदगी को प्यार करेंगे अल्लाह उसको कामयाब करेंगे, अल्लाह उसको कामयाब करेंगे, अल्लाह पाक उनके दुनिया के हालात भी बना देंगे और आखिर के हालात भी अल्लाह पाक उनके ठीक करेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों भाइयों, अल्लाह ने हमें आपको अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान किया, हमारे ऊपर अपना फजल और करम किया कि अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हमारी तरफ से जिलवाया। सारे नबियों के इमाम, सारे नबियों के सरदार सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको अल्लाह ने एक जिंदगी देकर भेजा है, जिन इंसानों के अंदर वो जिंदगी होगी अल्लाह उसको कामयाब करेंगे, जिनकी जिंदगी हजूर की जिंदगी से मेल खाएगी, उस जिंदगी के साथ जुड़ेगी जो जिंदगी अल्लाह ने आसमानों से उतारी है, अल्लाह उसको कामयाब करेंगे, चाहे वो कहीं हो, किसी इलाके में रहने वाले हो, कोई जुबान बोलते हो, किसी हाल में हो, और अगर उनके अंदर वो जिंदगी नहीं है तो हर नक्शे में अल्लाह पाक उनको नाकाम करेंगे। सारी दुनिया के अंदर, सारी दुनिया के इंसानों के लिए एक रास्ता है कामयाबी का, कि ईमान को बनाओ और आमाल को ठीक करो। मेरे भाई और बुजुर्गो, अल्लाह जल्ले जलालुहु ने हमें आपको अल्लाह ने उस मेहनत के लिए भेजा है, इस उम्र के ऊपर अल्लाह ने बहुत बड़ा फजल फरमाया, बहुत बड़ा करम फरमाया, कि जिस मेहनत के लिए अल्लाह नबियों को भेजते थे, अम्बिया अलैहिस्सलाम आगे लोगों ने इस बात की मेहनत किया करते थे, किसी नबी को अल्लाह ने अक्सरियत के मुकाबले पर भेजा और उनको इस बात की तरफ दावत दी कि अपने यकीन को ठीक करो, अपने बदन से निकलने वाले अमाल को ठीक करो, अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करेंगे। अक्सरियत का धोखा लगा, हमारे साथ अक्सरियत है, ये चंद एक टूटे फूटे लोग, इनकी क्या हैसियत है, अल्लाह ने पानी का तालाब भेज के गर्क कर दिया, कयामत तक के आने वाले इंसानों को गुलियात समझा दी कि देखो अगर अक्सरियत में हो और तुम्हारे अंदर वो ईमान और अमल जो अल्लाह के यहाँ मतलूब है, वो जिंदगी जो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है, अगर वो नहीं है तो अल्लाह पानियों के सैलाब भेज के क्यों गर्क कर देते, और अक्लियत में हो तो अल्लाह पाक उसी सैलाब में भी हिफाजत कर दे। कहीं बड़ी बड़ी अल्लाह ने बहुत बड़ा फजल फरमाया, बहुत बड़ा करम फरमाया, कि जिस मेहनत के लिए अल्लाह नबियों को भेजते थे, अम्बिया अलैहिस्सलाम आगे लोगों ने इस बात की मेहनत किया करते थे, किसी नबी को अल्लाह ने अक्सरियत के मुकाबले पर भेजा, बाकी तरफ दावत थी कि अपने यकीन को ठीक करो, अपने बदन से निकलने वाले अमाल को ठीक करो, अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करेंगे। अक्सरियत का धोखा लगा, हमारे साथ अक्सरियत है, ये चंद एक टूटे फूटे लोग, इनकी क्या हैसियत है, अल्लाह ने पानी का तालाब भेज के गर्क कर दिया, और कयामत तक के आने वाले इंसानों को गुलियात समझा दी कि देखो अगर अक्सरियत में हो और तुम्हारे अंदर वो ईमान और अमल जो अल्लाह के यहाँ मतलूब है, वो जिंदगी जो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है, अगर वो नहीं है तो अल्लाह पानियों के तालाब भेज के क्यों गर्क कर देते, और अक्सरियत में हो तो अल्लाह पाक उसी सैलाब में भी हिफाजत कर दे। कहीं बड़ी बड़ी मंडियों के मालिक हैं, शोएब अलैहिस्सलाम ने आके उनको उनको इस तरफ पुकारा, इसकी आवाज दी कि लोगो ईमान को बनाओ, अपने आमाल को ठीक कर लो, उस जिंदगी को प्यार करो जो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है, अल्लाह तुम्हें कामयाब करेंगे। नहीं समझ में आई, अल्लाह ने मंडी से देख के ऐलान कर दिया, खत्म कर दिया कि तुम्हारी तजारती मंडियां और तुम्हारे तजारती मराकज तुम्हें अल्लाह की तरफ से आने वाली मुसीबतों से नहीं बचा सकते अगर ईमान और आमाल ठीक है। अल्लाह पाक ने बादलाम को हुकूमतों के सामने भेजा, फिरौन के पास भेजा, नमरूद के पास भेजा, जाओ जाके उनको इस बात को समझाओ कि अपने आप को धोखे से निकालो। नहीं समझ में आई, अल्लाह पाक ने नाकाम कर दिया, हलाक कर दिया, और कयामत के आने वाले इंसानों के लिए ये बुनियाद कायम कर दी कि देखो कि जितने भी दुनिया के बच्चे हैं ये तुम्हें नाकामियों से नहीं बचा सकेंगे अगर तुम्हारे ईमान और अमाल का बिगाड़ चल रहा है। आखिर में अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया के
tribute dawat www.blogspot.com
کوشش کرنا اور اس کی محنت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے
और पूरी दुनिया के इंसान मेरे भाई और बुजुर्गो, पूरी दुनिया के इंसान हर इंसानी भाई है, सारी दुनिया के इंसानों के लिए सरकारी, सारी दुनिया के इंसानों के लिए हमदर्दी और उनके लिए दिलों के अंदर रहम का जज्बा, शफ़क़त का जज्बा होना ये मुसलमान के लिए जरूरी। हम किसी के लिए मज़लूमा नहीं, हर एक नफा पहुँचाना चाहते हैं। सारे नबियों की आवाज़ होती है इतनी रघुम ना से होना नहीं, देखो मैं तुम्हारा प्यार था हूँ, तुम्हें नफा पहुँचाना चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। मेरा हजर
लगे
या जा रहा था तो पत्थर लग गया, हालांकि हकीकत ये नहीं है। हकीकत क्या है? तुम्ही आगे लगी, दाएं हाथ ने बाएं हाथ की उंगली काट दी। पत्थर भी पांव को आगे लगा, पांव पत्थर को आगे लगा, लेकिन पत्थर को पांव को अपना समझता है, हाथ को अपना समझता है, इसलिए उसके हाथ कुछ छुपा देता है, किसी चीज का जिक्र नहीं करता, उसको सुई की तरह पत्थर की तरह मंसूब कर देता है। जब हम हर मुसलमान को अपना समझेंगे तो उसकी कमी को अपनी कमी समझेंगे और उसकी कमी को छुपाने की कोशिश करेंगे, उसकी कमी को छुपाने की कोशिश करेंगे और उसके लिए दुआ मांगेंगे। सारी दुनिया के मुसलमान ये सब एक जिस्म की तरह से सब एक जिस्म की तरह से है, लेकिन ये कब होता है जब अंदर रूह होगी, फिर आँख का काम करेगी, आँख का काम करेंगे, पाँव पाँव का काम करेंगे, और अगर जिस्म में से रूह निकल जाती है तो फिर मेरे बुजुर्गों भाइयों या वो जिस्म से होश हो जाता है तो फिर इसके टुकड़े भी कर दिए जाए तो उसको पता नहीं चलता, उसको एहसास नहीं होता। तो हम आप हमें और आपको अल्लाह ने एक उम्मत बनाया, एक उम्मत बनाया, अल्लाह ने हमें अमाल ऐसे दिए हैं जैसे पांच दफा नमाज, काला है, गोरा है, देहाती है, शहर का रहने वाला है, जो वहाँ मौजूद है वो मस्जिद में आके नमाज पढ़ेगा, सिंधी है, बलोची है, पठान है, प्रजाति है, इसका फर्क नहीं है, सब एक इमाम के पीछे आके नमाज का इस्तेमाल करें। और जो मैंने इस दिन के मोहल्लों को सबको एक जगह जमा कर दिया, ईद में साल में पूरे इलाके को एक जगह जमा कर दिया और हज के मौके पर पूरी उम्मत को एक जगह जमा कर दिया। ये उम्मत एक जिस्म की तरह से है, पूरी उम्मत ही करती है, सब किस्मत दीजिए, हमारे अंदर के जज्बे बदल गए। हाँ, पाकिस्तानी बने का जज्बा, नाइजेरिया बने का जज्बा, मलेशिया बने का जज्बा, अरब और अजब का जज्बा, ये जज्बे अल्लाह के यहाँ पसंदीदा नहीं, अल्लाह के यहाँ एक जज्बा पसंदीदा है जो मुसलमान है, हजूर की उम्मत ही, और जो जज्बा हजूर के अंदर का था, एलाए कलमतुल्ला, एलाए कलमतुल्ला, अल्लाह का कलमा दुनिया में बुलंद हो जाए और कुफर का कलमा बंद हो जाए, एक जज्बा हजूर के अंदर। आपके पास बहुत सारी कई चीजें हुई, बड़े से मक्का जमा होके आ गए और आगे कहा कि आप इस काम से मार चाहते हैं, हमसे मार लेने सबसे ज्यादा मालदार हो जाएंगे, बादशाह चाहते हैं हम आपको अपना बादशाह बना लेते हैं, अमीर बनना चाहते हैं अपने जैसे आपके घर के बाहर गाड़ देंगे आप हमारे अमीर बन जाइए, औरतें चाहते हैं वो ले आते हैं उनमें से जिनको पसंद कर उनके साथ निकाह कर देते हैं। क्या फरमाया कि देखो मैं इनमें से किसी चीज के लिए नहीं आया, इनमें से किसी चीज के लिए नहीं आया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, जन्नत की खुशखबरी सुनाने आया हूँ और जहन्नुम से डराने के लिए आया हूँ। और ये तो तुम कर सकते हो, अगर जो तुम नहीं कर सकते वो भी कर लो, आसमानों पर जाओ, सूरज और चांद को तोड़ो और मेरे दोनों हाथों में ला के रख दो, फिर भी मैं अपने काम से पीछे नहीं हटूंगा, और मैं या तो मेरी गर्दन मेरे जिस्म से अलहदा होगी या अल्लाह का कलमा दुनिया में फैलेगा, अल्लाह का दीन दुनिया में फैलेगा। सावधानी, आपकी आप सफर से वापिस आए, आपके देह मुबारक पर सफर के मुशक्कत के और गर्द के आधार से प्याले में पानी दे के आए, आपके देह मुबारक को अपने दुपट्टे के साथ साफ करना शुरू कर दिया और आपके चेहरे की और मुशक्कत की हालत को देखे रोना शुरू कर दिया, आप क्यों इतनी मुशक्कत उठाते हैं, क्यों इतनी मुशक्कत उठाते हैं? मैं कह बेटी रो नहीं, रो नहीं, तेरे बाप का दीन हर कच्चे पक्के घर में दाखिल होके रहेगा, चाहे ऊन का कहना है, चाहे चमड़े का कहना है, जहाँ तक रात जाती है वहां तक तेरे बाप का दीन जाएगा, जो मानेगा वो इज्जत पाएगा, जो इनकार करेगा अल्लाह उसको गरीब करेगा। ये मैं मुशक्कत, ये मुजाहदा, ये तकलीफ ऐसे नहीं उठा रहा, एक मकसद है सामने। एक मौके पर मैं या मेरी गर्दन मेरे से जिसम से अलहदा होगी या अल्लाह का कलमा दुनिया में फैलेगा। जो लोग इस आदम के साथ चलेंगे कि अल्लाह ने जिंदगी आसमानों से उतारी है, हमें खुद भी उस जिंदगी पे आना है और सारी दुनिया के इंसानों को उस पर लाने की कोशिश करनी है, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह कामयाब करेंगे। तो जिंदगी की तरफ दूसरों को दावत देना, उस रास्ते में जो मुशक्कतें आए, जो मुजाहदे आए, जो तकलीफें आए, उनको अल्लाह के लिए बर्दाश्त करना। आप बता बड़े मुबारक, बहुत मुबारक हैं, अल्लाह के रास्ते में निकले हैं इस्तेमाल में शिरकत के लिए, अपने घर बार को तोड़ के और यहाँ से कुछ अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए, अपने कारोबार को बंद करके, अपने बीवी बच्चों की लड़ाई बर्दाश्त करके अल्लाह के रास्ते में निकलना बड़ा कीमती है, बहुत कीमती। एक तो वो या एक नाम अल्लाह के रास्ते में लगा दी, जो कुछ दुनिया में है, दुनिया जो कुछ दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے رسول کو یعنی مجھے اللہ کے رسول کا مانتا ہے اور دین اسلام کو اپنا دین سمجھتا ہے, اللہ کو اپنا رب مانتا ہے, اسلام کو اپنا دین یقین رکھتا ہے اور مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے, جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے, جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے.
بڑے خوش قسمت
قسمت ہے ماشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہیں, یہ تھوڑا سا وقت ہے, بہت قیمتی بہت قیمتی ہے, اور یہ زندگی بہت قیمتی ہے. قیامت کے دن آدمی کو افسوس ہوگا کہ وہ جو گھڑی میں نے اللہ کی یاد کے بغیر گزاری, میں نے اللہ کی دین کے بغیر گزاری, کار کار گنا بولا. ایک سبحان اللہ کہنے پر جنت میں جنتی کو خوشبو آئے گی, ایسی شاندار خوشبو آئے گی, ایسی شاندار حیران ہو جائے گا کہ خوشبو کہاں سے آئی, پر تیرے سے اوپر والا جو جنتی ہے اس نے اپنی جنت میں گڑبڑ بدل دی ہے, اس کی خوشبو تو آیا کرتا. اب سوچنا پڑ جائے گا کہ بہت سارے امال ہوں گے, بہت سارے درجات ہوں گے, اس سے کیا فرق ہے میرے میں اس میں کب یہ سبحان اللہ سے جا رہے گا.
ایسی مسجد تھی جہاں
मेरी बात मेरे टीम के दल के आखिर के दल के हो रहे थे क्या वो लोग क्या चाहते थे क्या चाहते थे यानी जन्नत जन्नत की तरफ कर रहे थे जहन उनसे बड़ा मांग रहे हैं अब ये तो गवाह है ना कि हमसे उसको जन्नत दे दी और जहन उनसे बड़ा दे एक बैठा खर्च करते एक आदमी अपने ही गाँव के वहाँ आया था उसके बारे में क्या बोलूँ मैं मारे ऐसे मुबारक लोग हैं ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं जिनके बाद बैठने वाला अपने किसी गाँव से आने वाला वो भी बाहर हो गया तो बड़ी मुबारक मजलते हैं इसलिए दरखास्त यह है कि आने वाले मजलिस पर भरपूर मिल जाए और नकद लोगों को तैयार करने की कोशिश की जाए और हम सब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाँव को अपना गाँव बना लेते हैं इतना महिमा यहाँ आ रहा है वो मौत को सामने रखे आखिर को सामने रखे मेरे बुजुर्गो दुनिया की जिंदगी हाथ से निकल दी जा रही है ये धोखा है इस धोखे में क्या फिकर असल जिंदगी आखिर की है असल जिंदगी मरने के बाद अकलमंद इंसान वो है जो आखिर को सामने रखे उसकी तैयारी करने में लग जाए उसकी तैयारी करने में लग जाए तो हर आने वाला यहाँ से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाँव को अपना गाँव बनाए आप अपनी मेहनत को अपनी मेहनत बनाए और ये अजम करे कि मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुमाइंदा हूँ और पूरी दुनिया के इंसानों को अल्लाह के सामने झुकाने की ये कोशिश करना मेहनत करना आज से मेरा मकसद हम ताजर रिश्तेदार दुकानदार और आज बाद में है पहले हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम वाले हैं अल्लाह के दीन को और दीन के तकाजों को मुकदम रखेंगे उनको आगे रखेंगे बाद अपनी जरूरतों को देखेंगे तो इसके लिए तैयार रहेंगे अल्लाह तो सारे इज्तिमाई नमाज में शुरू से आकर तक बैठे क्या इस्तेमाल करें